हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों का मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा। पिछले 11 वर्षों के प्रचार के अनुभव में प्रथम बार मैं किसी धाम में इस्कॉन मंदिर के बाहर धाम की महिमा का वर्णन करने का प्रयास करने जा रहा हूं, तो आप सभी के कृपा का अभिलाषी हूं। याद है प्रथम बार 11 वर्ष पूर्व मैं ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए आया था, तो कृष्ण बुक और दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का वर्णन इत्यादि श्रवण करके और श्री प्रभुपाद के ग्रंथों में चित्रों को देखकर वृंदावन की एक प्रकार की छवि मन में बैठ गई थी और उस संकल्पना के साथ में ब्रज में प्रवेश किया था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, अपनी सीमित भौतिक चर्म चक्षु से हम धाम की महिमा को समझ नहीं पाते। तो नए भक्त होने के साथ साथ इस तरह का अनुभव हुआ तो मैं काफी भ्रमित अवस्था में था उस पहली यात्रा में, क्योंकि जो अपेक्षा थी वैसा धाम लग नहीं रहा था। जो कृष्णा बुक में चित्र आता है, कृष्ण और बलराम यमुना के तट पर भाग रहे हैं अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, गौओं के साथ, इतनी हरियाली है और यमुना का जल इतना सुंदर दिखता है। और उस समय जब यमुना में वास्तव में गया तो झटका लगा मुझे देख के, अरे बाप रे, ये वही यमुना है क्या? तो उस समय मुझे याद है मैं सनत कुमार प्रभु को पूछा था कि ये वृंदावन बड़ा भयंकर है, तो वृंदावन को कैसे समझा जाए? तो उन्होंने कहा, प्रयास मत करो, प्रसाद सर्विस करो। तो उस समय से जो मैं वो सेवा कर रहा हूं अब तक वही करता आया हूं। तो अभी भी धाम के विषय में इतना आकर्षण नहीं और धाम के संबंध में इतना ज्ञान नहीं, लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए और भक्तों के संतोष के लिए कुछ दो शब्द बोलने का प्रयास करूंगा। और सनत कुमार प्रभु के साथ साथ हमारे दूसरे शिक्षा गुरु हैं कृष्णानंद प्रभु, जो कि राधा गोपीनाथ मंदिर के भक्तवृंद में धाम यात्राओं के लिए बहुत प्रचलित हैं और उनकी कृपा दृष्टि भी मुझ पर बहुत आरंभ के दिनों से रही है, तो उनके आशीर्वाद के बिना भी कथा आरंभ करना अनुचित होगा। जब मैं IIT से आता था तो काफी मेरा ख्याल रखते थे वो, और एक दिन मैं स्नान के बाद अपना पैंट शर्ट पहन रहा था तो कह रहे थे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कब तुम्हारा पैंट शर्ट उतरेगा। मैं घबरा कर पैंट शर्ट पहन के भागा और अगले 2-4 दिन तक उनके सामने नहीं आता था। और अगले एक हफ्ते तक जब वो भी जप करते हुए दिखते या भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए दिखते, मुझे लगता मेरे लिए प्रार्थना करने लगता है। तो उनकी कृपा से ब्रह्मचर्य आश्रम में और भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे सत्संग में धाम में बैठकर कथा करने का, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विश्व के कई देशों में भ्रमण करते समय मैं ऐसे कई लोगों से भेंट किया जिन्होंने कहा कि मेरी बस जीवन की एक ही इच्छा है कि मृत्यु से पूर्व एक बार वृंदावन या मायापुर का दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दिन रात परिश्रम कर रहे, काम कर रहे हैं, पैसे एकत्र कर रहे जिससे कि वो भारत आ सकें और वृंदावन और मायापुर में आकर भगवान का और भक्तों का और लीला स्थलियों का दर्शन कर सके। और हमारे यहाँ तो एक नहीं मल्टीपल यात्रा निकलती है, सबके पास चॉइस है कौन से यात्रा में जाओ, कौन सी भाषा में आप चाहोगे, है कि नहीं, कौन सा वाला ज्यादा महंगा वाला, सस्ता वाला, सादा वाला, टिकाऊ वाला, पूरा चॉइस है हमारे पास, जो कि सामान्य व्यक्ति विश्व के कितने देशों में विचार भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों को भेंट करके पता पड़ता है कि वास्तव में हमको जो सौभाग्य मिला है ये बड़ा अभूतपूर्व है। और कई बार जब बहुत कुछ मिल जाता है तो हम उसकी महिमा को समझ नहीं पाते। बहुत कुछ और बहुत आसानी से जब मिल जाता है और बिना विशेष प्रयास किए, बिना तपस्या किए, तो हो सकता है अति परिचयात अवज्ञा होने की संभावना हो। इसलिए अभी का जो समय कथा के लिए अनुकूल नहीं है, अभी अभी दिवस भर के परिश्रम के पश्चात पेट भर के भोजन किया है, और जैसे इस्कॉन के भाषा में LSD विश्राम करने का समय है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि कुछ मथुरा के इस सुंदर स्थान पर हम दशम स्कंद श्रीमद् भागवत से कुछ कथा करने का प्रयास करेंगे। तो इस परिचय के साथ आज मैं कथा का विषय का उद्घाटन करूंगा। दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के प्रथम चार अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम अध्याय वर्णन करता है भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव, दूसरे अध्याय में वर्णन है कि देवताओं के द्वारा प्रार्थना, तीसरा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का वर्णन है, और चौथे अध्याय में कंस ने जो नाना प्रकार के अत्याचार किए उसका वर्णन है। तो प्रथम अध्याय में हम देख सकते हैं कि किस तरह नाना प्रकार की समस्याएं, क्लेश जब जीवन में आती हैं, तब व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ता है। एक इस तरह का मैं दृष्टांत दे रहा हूं कि जिस प्रकार देवतागण और धरती पूरी तरह क्लेश पीड़ित थे, अर्थात समस्या, तो जब जीवन में आपातकालीन परिस्थिति आए तो व्यक्ति कृष्ण की ओर अग्रसर होता है। गोपियां कहती हैं, प्रणत देही नाम पाप कर्षणम धरणी मंडनम ध्येयम आपदी। ध्येयम आपदी अर्थात जो आपातकालीन परिस्थिति में जिनके चरण कमल ध्यान करने योग्य हो। तो जब क्लेश और आपत्ति और नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, तब हम कृष्ण की ओर जाते हैं, फिर साधना भक्ति आरंभ करते हैं। तो साधना भक्ति में नाना प्रकार से हम लोग श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं। तो जो दूसरा अध्याय है जहां पर देवतागण भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव हेतु नाना प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं, ये भक्त की इच्छा के तुल्य है कि जो भगवान से आग्रह करते हैं कि प्रकट हो जाइए। और तीसरा अध्याय है कि भगवान का वास्तव में आविर्भाव होता है, तो ये भक्ति में परिपूर्णता के तुल्य है, परफेक्शन इन भक्ति। तो कई बार मन में ये विचार आता है कि अब मेरे जीवन में समस्या है, भक्ति करूंगा, नाम जपूंगा, भक्तों का संग करूंगा, समस्याओं का समापन हो जाएगा, चिरकाल तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस बात की आकांक्षा थी वह आकांक्षा की पूर्ति हो गई है। लेकिन मुक्ति में और भक्ति में यही बहुत बड़ा अंतर है कि प्रथम अध्याय में क्लेश और समस्याएं थीं, देवतागण नाना प्रकार से ब्रज में और आसपास के स्थानों में जन्म लिए ये अपेक्षा करके समस्याएं समाप्त होंगी, और तीसरे अध्याय में कृष्ण का आविर्भाव हुआ है, लेकिन चौथे अध्याय में फिर देखते हैं कि कंस अपना अत्याचार आरंभ कर देता है। अर्थात कृष्ण के आविर्भाव से पूर्व समस्याएं थीं, कृष्ण के आविर्भाव के पश्चात समस्याएं दुगुनी हो गई। अर्थात कभी भी व्यक्ति को यह विचार नहीं करना चाहिए कि कभी ऐसा समय आएगा जीवन में जब समस्याएं और क्लेश नहीं आएंगे। तो कृष्ण भक्ति समस्याओं के समाधान के लिए उपाय नहीं है। कहीं पर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप मेरा आश्रय लो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, नहीं, जब तक जगत में रहेंगे समस्याएं आपत्तियां आएंगी, लेकिन उसका उपाय है कृष्ण का आश्रय लेना। और जब मन कृष्ण में रहेगा तब फिर नाना प्रकार की आपत्तियां और समस्याएं हमें परेशान नहीं करेंगी। तो ये प्रथम चार अध्याय से ये हम शिक्षा ले सकते हैं कि भक्ति में आने से पूर्व भी हम जीवन में समस्याग्रस्त थे, क्लेश पीड़ित थे। और प्रचार के लिए भले हम लोगों को कह दें आप हरे कृष्ण में आ जाओ सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, अच्छी तरह जानते नहीं होगा, फिर भी कह देते हैं क्योंकि लगता है कि पहले से डरा देंगे तो आएगा ही नहीं है। तो पहले प्रसाद का प्लेट देते बोलते लो भाई जब करो सब ठीक हो जाएगा, और आने के बाद एक दो साल के बाद बोलते हैं प्रॉब्लम गया नहीं। बोला मुझे पता था, लेकिन क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम आते ही नहीं थे। लेकिन अब जो समस्याएं हैं, जो क्लेश हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो भगवान की सेवा में उत्पन्न होते हैं, वो बाहरी दृष्टि से क्लेश प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में वो हमारी प्रीति का सूचक है और वो हमारे आनंद का और हृदय के भीतर उल्लास का कारण बनता है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कहा है कि जो भक्ति में नाना प्रकार की बाधाएं आए, जो साधक के जीवन में चुनौतियां आए, समस्याएं आए, क्लेश आए, वास्तव में वो उसके आनंद का कारण बनती है क्योंकि वो जानते हैं कि ये भगवान के आनंद के लिए। आरंभ के दिनों में जब इस्कॉन के भक्त, पाश्चात्य भक्त आकाशगंगा बिल्डिंग जो पेडर रोड के पास है वहां निवास करते थे, तो प्रभुपाद ने जुहू के लैंड में जाने को कहा। उस समय जुहू केवल एक छोटा सा गांव था और उसकी आबादी 2000 थी, केवल 2000 की आबादी थी जुहू में। और उस समय कोई शिष्ट व्यक्ति वहां रहने का विचार भी नहीं करता था। और तब प्रभुपाद ने भक्तों को कहा कि आपको उस लैंड पे जाके रहना होगा। तो भक्तों ने कहा यह कैसे संभव है? तमाल कृष्ण महाराज ने कहा प्रभुपाद हम लोग पाश्चात्य देश से हैं, हमको नल खोलो तो पानी चाहिए और दरवाजे के ऊपर नॉब चाहिए, बटन चाहिए, सब बिजली चाहिए, उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। प्रभुपाद ने कहा डू यू वॉन्ट टू गेट प्यूरिफाइड, क्या आपको शुद्ध होना है अथवा नहीं? बस एक प्रश्न पूछा, आपको शुद्ध होना है कि नहीं होना है। केवल उस प्रश्न को सुनकर बाकी सभी भक्तों के मन में जो शंका चल रही थी उसका समाधान हो गया। और तब जाकर भले कई लोगों के मन में तनिक मात्र, रंच मात्र इच्छा नहीं थी कि वहां आके रुके, उनका मन बगावत कर रहा था कि छोड़कर चले जाओ इस स्थान को, यहां पर तो बिल्कुल मच्छर और चूहे रहते हैं, भक्तों के रहने का स्थान नहीं है, बड़ा तमोगुणी है, छोड़ दो इसको, और पचासों कारण प्रतिक्षण आ रहे थे मन में छोड़ने के लिए। लेकिन देखा कि प्रभुपाद की इच्छा थी कि वहां रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने सभी संकल्प करके संघर्ष करते हुए उस लैंड पर, उस जुहू के प्रॉपर्टी पर रहे और बहुत से संघर्ष झेले। लेकिन उस पूरे गुट में केवल शिला प्रभुपाद एक ही थे जो उस समय संघर्ष करने के मूड में थे, बाकी सभी विचार कर रहे थे बहुत कठिन है, रहना असंभव है, हम भक्ति में आए हैं सुकून के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, क्लेश के लिए नहीं। क्लेश पीड़ित थे तब तो हरे कृष्ण में आए, हरे कृष्ण में आने के बाद भी हमको क्लेश पीड़ित अवस्था में पटका जा रहा है, ये क्या है? ये अत्याचार है, ऐसा कई बार मन में विचार आएगा। लेकिन क्योंकि श्री प्रभुपाद ने उनको प्रेरणा दी अपने निजी व्यक्तिगत उदाहरण से, तो उस प्रेरणा को प्राप्त करके उन चुनौतियों को झेलने का उनको शक्ति प्राप्त हुआ। और क्योंकि उस समय वो टिके रहे तो धीरे धीरे करके श्री श्री राधाराज बिहारी मंदिर का निर्माण हुआ और देखते ही देखते एक संगमरमर का महल तैयार हो गया। और अब उसी स्थान पर मकर संक्रांति के दिन 25-30 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट हेवन ऑन अर्थ फिर उद्घाटन होने वाला है, जो उस समय 35 वर्ष पूर्व केवल एक छोटा सा टुकड़ा था जमीन का जहां कोई नहीं रहना चाहता था। अर्थात भक्ति में आए हैं तो विचार करना चाहिए कि भक्ति मुक्ति से भिन्न है और यहां कभी भी किसी भी क्षण शांति का प्रस्ताव लेकर नहीं आ सकते। तो प्रथम चार अध्याय दशम स्कंद में इसी बात का मुख्य वर्णन आया है कि यदि कृष्ण के आविर्भाव से कोई शिक्षा लेना चाहते हो तो ये कि कृष्ण के आविर्भाव के पूर्व भी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, और कृष्ण के आविर्भाव के बाद भी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी। बस यही था कि कृष्ण के आविर्भाव के पश्चात कृष्ण का आश्रय लेने का एक सुअवसर, स्वर्णिम अवसर प्राप्त था भक्तों के पास। इसीलिए ये बात जब मन में रहे तो हम भक्ति में प्रेम पूर्वक सेवा कर सकते हैं, अन्यथा क्षण क्षण मन हमको शांति का प्रस्ताव देता रहेगा, निरंतर उस ओर खींचेगा जहां कम से कम कठिनाई और परेशानी हो, और इससे हम भक्ति में, भक्तों के संग में, श्रील प्रभुपाद के मिशन में उचित उत्तरदायित्व लेने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि निरंतर मन में यही विचार रहता है कि ऐसा कुछ करो जिससे कम से कम समस्या हो, कम से कम प्रॉब्लम हो, कम से कम तकलीफ हो, कम से कम मगजमारी हो, प्रेम हो, शांति हो, और बस इस तरह गाड़ी चलते रहे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का संदेश नहीं है। तो उस समय प्रभुपाद की एक शिष्य आई और प्रभुपाद को कहने लगी कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूं, फिर भी कई भक्त मेरी आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा, मैं छोड़ के जा रही हूं। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारी समस्या है कि आप इस भौतिक जगत के सागर में, भव सागर में आप शांति की खोज में हो। यू आर लुकिंग फॉर अ काम सी। यहां पर शांति नहीं है, संभव नहीं है। जब तक भगवत धाम में नहीं जाते तब तक यह संभव नहीं है। लेकिन वास्तव में इन चुनौतियों में ही आनंद ढूंढने सीखना चाहिए, क्योंकि इससे खिंचकर ही भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान की नित्य लीला चल रही है गोलोक में, लेकिन उन नित्य लीलाओं को त्याग कर भगवान नैमित्तिक लीला का प्रदर्शन करने के लिए इस भौतिक जगत में, इस धरती तल पर क्यों आते हैं? क्योंकि गोलोक धाम में जितने भक्त हैं, जितने निवासी हैं, वो सभी अपने अपने रूपों में, स्वरूपों में भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी, आनंदमयी सेवा में तल्लीन है। भगवान की हर आवश्यकता की पूर्ति केवल इच्छा मात्र से संपूर्ण हो जाती है। जितने भगवान के अनुयायी पार्षद हैं, वो सभी अपनी अपनी सेवाओं में निपुण और पटु हैं। जिस प्रकार से, जिस ढंग से भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट आनंद देना चाहिए, वो देना जानते हैं। ऐसे आदर्श स्थान को त्याग कर भगवान इस कचड़े की पेटी में क्यों आते हैं, जो कि भौतिक जगत है? क्यों? क्योंकि वहां पर निरंतर सब कुछ ठीक चलता रहता है, सब कुछ बराबर चलता रहता है, जैसी इच्छा होती है वैसी चलती रहती है। तो भगवान भी उससे कभी कभी विचार करते हैं, चेंज चाहते हैं कि ऐसे जगह जाओ जहां कुछ एक्शन हो, जहां पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो, कोई विरोध करे, तब तो कुछ आनंद भी आए। तो इसलिए भगवान भी चुनौतियों के भूखे भगवत धाम छोड़कर भौतिक जगत में आते हैं, जिससे कुछ संघर्ष हो, और ऐसा संघर्ष का वातावरण तैयार करते हैं, और जब वो संघर्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त होता है तो उस संघर्ष की पराकाष्ठा के समय भगवान आविर्भूत होते हैं, और तब वो आनंद लेते हैं। हाँ, तब उनको लगता है मैंने कुछ किया। नहीं तो भगवत धाम में यो चुटकी बजाओ सब तैयार है, तो उससे भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। जैसे कई बार अमेरिका में देखा गया है, कई कई करोड़पति अरबपति हैं, इतना धन है उनके पास कि इच्छा मात्र करने से उनके सामने प्लेन, गाड़ियां, नौकर चाकर सब तैयार हो जाते हैं, उससे वो लोग बोर हो जाते। तो वो लोग क्या करते, वेश बदलते हैं और भिखारी बनते। भिखारी बन के वो लोग यहां वहां भीख मांगते हुए घूमते हैं और उसमें आनंद लूटते हैं, क्योंकि बाहर कोई दूसरा भिखारी उनको भगा देता है तो उनको आनंद आता है, हो देखो जानता नहीं मैं करोड़पति हूं, देखो कैसे व्यवहार कर रहा है मेरे साथ, और वो देख के उनको आनंद आता है। और इतना बोर होते हैं कि दो चार करोड़पति आपस में भिखारी बन के बैट लगाते हैं कौन ज्यादा भीख मांगेगा, क्योंकि ना सामान्य जगह जाकर अपना बैट लगा लगा के बोर हो गए। तो उसमें उनको वैरायटी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति को वैरायटी चाहिए। तो यहां हम लोग बुरी तरह माया देवी के आक्रमण से पीट पीट कर परेशान हैं और सोच रहे हैं कि कब वो समय आएगा भगवत धाम में जाएंगे और शांति होगी। लेकिन भगवत धाम की शांति और भगवत धाम की प्रेममय सेवा को छोड़कर भगवान बीच बीच में आते हैं, जिससे कि इस भौतिक जगत के कुछ इस तरह के आदान प्रदान का आस्वादन कर सके। इसलिए समझना चाहिए कि यहां पर जो संघर्ष और चुनौती उपलब्ध है, प्राप्त है, वो भगवत धाम जाने के बाद सनातन काल तक मिलेगा नहीं। तो ये अंतिम चांस है ये अवसर का चखने का, क्योंकि महाप्रभु के मिशन में आ गए, भगवत धाम जाना निश्चित है। तो इस जीवन के पश्चात नाम लेकर हम भगवत धाम जाएंगे, उसके बाद ये जगत में जो जो गड़बड़ होता था वो हम लोग याद करेंगे वहां पर, और वहां दूसरे को कहेंगे थोड़ा झगड़ा करना, बोलेगा नहीं नहीं आप प्रभु हो, बोले अरे यार कहां पहुंच गए, वो रस कहां गया, वो जब लोग कुछ निंदा करते थे, कुछ आलोचना करते थे, कुछ गड़बड़ होते थे, तो वो दिन की हम लोग याद निकालेंगे। इसलिए जब तक ये रस चख रहे हैं, और 20-30 साल की बात है, प्रेम से चखो, क्योंकि सनातन काल तक ये चखने नहीं मिलेगा, ये महाप्रभु की कृपा है। इसलिए यहां पर जो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का यहां वर्णन आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और संघर्षों और चुनौतियों के बीचों बीच है। तो प्रथम अध्याय में मैं चार मुख्य इसमें भाग लेना चाहूंगा। पहला, साधक के जीवन में साधना का महत्व। दूसरा, प्रचार। तीसरा, सेवा से संबंधित चुनौतियां। और चौथा, कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु का आश्रय या महान भक्तों का आश्रय कितना महत्वपूर्ण है। तो इन चार विषयों पर हम संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले 13 जो श्लोक हैं, उसमें महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से दशम स्कंद का निरूपण करने का प्रस्ताव रखते हैं, निवेदन करते हैं। और ये 13 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 13 श्लोकों में कृष्ण कथा और कृष्ण लीला से संबंधित महाराज परीक्षित बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। तो ये हमारे चर्चा का पहला विषय होगा कि साधना में कृष्ण कथा का महत्व, श्रवण और कीर्तन का महत्व। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जिस तरह भोजन ऊर्जा के लिए आवश्यक है शरीर के, उसी प्रकार जब तक साधना भक्ति के स्तर पर हम श्रवण और कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारे भक्ति का पोषण नहीं होगा। रागानुगा के स्तर पर केवल सेवा के माध्यम से ही आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, लेकिन साधना भक्ति के स्तर पर जब तक उचित मात्र में श्रवण नहीं करेंगे और उचित चेतना के साथ श्रवण नहीं करेंगे और उस श्रवण के कथा का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हम भक्ति में स्फूर्ति नहीं उत्पन्न करेंगे। तो कई बार लगता है कि अरे भक्ति में 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, बड़ा सूखा सूखा लग रहा है। जब आया था तो बड़ा उत्साह था, कोई भी कीर्तन में बिल्कुल सीलिंग तक जंप लगाता था, अभी आता हूं तो धक्का मार मार कर भी गाड़ी नहीं चलती, क्या बात है। पहले कथा में एक एक पॉइंट में झटका लगता था मुझे, अरे क्या नवीन बात बताई, ओहो कितना आनंद आया। अभी कथा शुरू होते ही सब पता लगता है, पूरा लेक्चर ही पता है मुझे अब क्या होने वाला है, तो फिर उसमें कुछ रुचि नहीं रहती। बुक खोलता हूं तो लगता है कि अरे ये तो वही वही बात बार बार दोहरा रहे हैं, कृष्ण भगवान है, आत्मा है, उन्हें सेवा करनी है, भगवत धाम जाना है, पता है यार आगे कुछ बोल। तो लगता है कि ये सब सरल बातें हम पहले से जानते हैं, कुछ जटिल बात बताओ, कुछ मजेदार बात बताओ, कुछ ऐसा घुमाओ कि मजा आ जाए, ऐसा कुछ बताओ कि दिमाग के तार खुल जाए और अंदर करंट लगे। क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि सरलता का पूरी तरह सर्वनाश हो गया है, और इसीलिए सरलता के विषय में किसी को आश्वासन भी दिलाना हो तो बड़ी जटिल भाषा में उनको सरलता के विषय में सेमिनार देना पड़ता है, तभी वो व्यक्ति कहता है हाँ हाँ बहुत अच्छा बताया, कॉम्प्लेक्स बताया सिंप्लिसिटी के बारे में, और तब जाके उसको आनंद आता है। तो ये हमारी समस्या है, ये हमारी व्याधि है, और इसलिए कृष्ण कथा के संबंध में रुचि जागृत नहीं होती। तो श्रील प्रभुपाद ने रात्रि के निद्रा को भंग करके कितने ही ग्रंथ लिख डाले। श्रीमद् भागवत के तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखे तो रात के 11 और सुबह के 5-6 बजे के बीच, वो समय जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी दूसरी सेवा करें न करें, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस सेवा का स्लॉट छू नहीं सकता, चाहे ऊपर से नीचे कोई भी हो। और रात को 1-2 घंटा देर से भी हम सो जाएं तो बराबर नोट करते हैं कि लेट हो गया है, थोड़ा आगे भी लेट होना चाहिए, क्योंकि शरीर के प्रति इतना प्रेम है, इतनी प्रीति है, रात को सुलाते सुलाते शरीर को हम सांत्वना दे, बेटा कल मिल जाएगा तुमको, 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, चिंता मत करो। तो रात को वो निद्रा का समय जो हमको सबसे अधिक मीठा लगता है, वो समय त्याग कर प्रभुपाद बैठ कर अपने तात्पर्य लिखते थे। किस लिए? हमारे लिए, जिससे कि हम उसका आस्वादन करें, उसको स्वीकार करें। तो सब्जी लाया, काट दिया, भोजन बना दिया, सब कुछ तैयार कर दिया, सर्विंग प्लेट में डाल दिया, प्लेट भी लाके दे दिया, चम्मच भी लेके, हाथ में चम्मच लेके दे रहे हमको, लो। हम कहते और चम्मच सामने आए तो सो गए हम, ये अवस्था है। तो इसलिए जो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं श्रवण के विषय में, कृष्ण कथा के विषय में, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी भक्ति के जीवन में और श्रवण के संबंध में उत्साह लाने के लिए। तो 4 बातें कहते हैं। सर्वप्रथम वो कहते हैं श्रवण क्यों करना चाहिए, मैं कृष्ण के संबंध में श्रवण क्यों करना चाहता हूं, व्हाई। और दूसरा वो कहते हैं कि कृष्ण के संबंध में मैं क्या सुनना चाहता हूं, व्हाट डू आई डिजायर टू हियर अबाउट कृष्ण। तीसरा वो कहते हैं कि किस तरह से, किस प्रकार से मैं सुनना चाहता हूं, किस प्रक्रिया के माध्यम से, हाउ। और चौथा वो कहते हैं कि कब, व्हेन, किस समय मैं ये सुनना चाहता हूं। तो ये 4 प्रश्न श्रवण के संबंध में, कृष्ण कथा के संबंध में परीक्षित महाराज कह रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो सर्वप्रथम वो कहते हैं क्यों, मैं कृष्ण के संबंध में प्रश्न क्यों कर रहा हूं, वो कह रहे हैं। तो इसके लिए वो 4 कारण बताते हैं। पहला वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के प्रेम के पात्र हैं। जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्य दास। तो यहां पर परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना। यदुवंश में कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान भूत भावना। भूत भावना शब्द का अर्थ है वो व्यक्तित्व, वो भगवान षडैश्वर्यशाली, साक्षात ज्ञान घन, आनंद घन, चिदानंद स्वरूप जिनका है, जिनके साथ आदान प्रदान करके जीव के हृदय में प्रीति का प्रादुर्भाव हो, भूत भावना। अर्थात वो व्यक्ति जो जीव के हृदय को शुद्ध भगवत प्रेम से आप्लावित कर दे। तो इसलिए यहां पर भूत भावना शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे वास्तविक प्रेमी हैं। कृष्णा इज माय रियल लवर। यह पहला कारण है। प्रत्येक जीव प्रेम का भूखा है, लेकिन उस प्रेम की क्षुधा का निवारण के लिए वो इस भौतिक जगत के इंद्रिय विषय भोगों के पीछे लालायित है। इसलिए वर्णन आता है, क्षुत परितो यथा दीना सारमेय गृहम गृहम। जैसे गली का कुत्ता घर घर भटकता फिरता है अपने भूख को मिटाने के लिए, वैसे प्रेम का प्यासा जीव इस भौतिक जगत के अपूर्ण इंद्रियों से युक्त जीवों के पीछे दुम हिलाता हुआ फिरता है। अपेक्षा करते हुए कि एक न एक दिन मेरी इच्छा की पूर्ति ये व्यक्ति करेंगे। लेकिन जो स्वयं अपूर्ण है और भूखा है और प्यासा है, वो दूसरे प्यासे और भूखे व्यक्ति को संतोष कैसे दे। इसलिए वर्णन आ रहा है कि केवल कृष्ण ही है व्यक्ति जो वास्तव में किसी को संतुष्ट कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए वो वास्तविक प्रेम के पात्र हैं। अगर किसी के प्रति प्रेम दिखाना है तो वो कृष्ण है। एक भक्त ने प्रभुपाद से प्रश्न किया, हम इस तरह कैसे कह सकते हैं कि ये मेरे भगवान हैं, माय गॉड। अभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये मेरे भगवान हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं मेरे भगवान, ये उचित नहीं है कहना। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि जहां तक जीव का प्रश्न उठता है, जब एक जीव दूसरे जीव के साथ संबंध स्थापित करेगा तो फिर जब हम कहते हैं ये मेरा है तो दूसरे का नहीं होता। लेकिन भगवान पूर्ण है, और जब एक जीव भगवान के साथ संबंध स्थापित करेगा तो दूसरे जीव को उससे कोई आपत्ति नहीं होती। इसलिए इस जगत में जब एक व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं तो उसके साथ दूसरा कोई व्यक्ति प्रेम करेगा तो द्वेष का पात्र बनता है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जब इस तरह के अवैध संबंध स्थापित होते हैं तो अंत में वो बड़ा भयंकर विभत्स रस में ही अंत होता है उसका। कभी बड़े बड़े हत्याकांड हो जाते हैं और इस तरह का पुलिस केस होता है कि पुलिस भी उसमें हस्तक्षेप करने के लिए डरती है। लेकिन भगवान के साथ जब कई जीव कोटि कोटि जीव संबंध स्थापित करते हैं, भगवान को प्रेमी मानकर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। भगवान के मंदिर में हम लोग खड़े होकर राधा गोपीनाथ का दर्शन लेते हैं तो मैं यदि दर्शन ले रहा हूं और दूसरा दर्शन ले रहा है तो हमको उससे द्वेष नहीं होता, अरे ये भी ले रहा है, ए उधर मत देख, उधर देख, उनको मत देख, ऐसी इच्छा भी नहीं होती। और इसके विपरीत इच्छा होती है कि और लोगों को ले आओ और इनके दर्शन कराओ और इनकी सेवा में लगाओ। तो ये वास्तविक प्रेम है, रियल लव। तो परीक्षित कह रहे हैं कि हम सभी प्रेम के भूखे हैं, इस बात को समझ जाओ कि यदि प्रेम चाहते हो तो केवल कृष्ण ही वो प्रेम दे सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि भगवान के प्रति मेरी आस्था है, मैं श्रवण करना चाहता हूं क्योंकि भगवान ही श्रेष्ठतम वैद्य हैं। कृष्णा इज माय लवर एंड कृष्णा इज माय डॉक्टर। अब ये उन लोगों के लिए कह दिया जो प्रेम के स्तर पर नहीं है, जिसका हाथ पैर फ्रैक्चर है, अस्पताल में भर्ती है, बुरी तरह से करा रहा है, केवल आ ऊ कर पा रहा है, और उसके पास जाकर प्रेम की बातें करो तो बोलेगा बाद में, पहले थोड़ा ठीक हो जाऊं, डिस्चार्ज हो जाऊं तब फिर चार्ज हो जाऊंगा। लेकिन अभी ऐसी अवस्था में आप कौन से प्रेम की बात कर रहे हो। तो इसलिए जो हृदय में नाना प्रकार के अनर्थ घूम रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति से मुक्त नहीं हुए, तो भगवान से संबंधित प्रेम की बातें नहीं समझ सकते। तो फिर आप कहोगे कि भाई कुछ प्रैक्टिकल बताओ। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, यदि काम क्रोध लोभ के दास अनुदास भी हो तो भी आपके लिए आशा की किरण है, क्योंकि कृष्ण कथा के माध्यम से चित्त के अंदर जितने नाना प्रकार के अनर्थ हैं उनका भी विनाश होता है। ये व्याधि है, भव रोग है, और कृष्ण डॉक्टर हैं जो कृष्ण कथा की औषधि हम सभी को वितरित कर रहे हैं। तो कहते हैं निवृत्त तरशय रूप गियमाना भव औषधा श्रोत्र मनोभिरामात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विराजेत विना पशुगनात्। कह रहे निवृत्त तरशैर उपगीय माना, जो कृष्ण कथा के संबंध में ज्ञान देता है उसे निवृत्त तृष्णा होना चाहिए, अर्थात हृदय उसका, चित्त उसका शुद्ध हो। भवौषधात क्षोत्र मनोभिरामात्। तो ये कृष्ण कथा भव रोग का औषधि है, भव औषधात। लेकिन सामान्य व्यक्ति औषधि से घबराता है और लगता है कि दवाई मतलब कड़वी, दवाई मतलब बेकार। लेकिन मनोभिरामात ये मन को तृप्त करने वाला है, मन को आकर्षित करने वाला है, ये अमृत के तुल्य है। इसलिए इस श्लोक में वर्णन आ रहा है कि कृष्ण कथा हमारे इंद्रियों की प्यास को बुझाता है, हमारे मिथ्या अहंकार से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है और मन को नाना प्रकार के विकल्प से बचाता है। क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विराजित विना पशुघ्नात। तो प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज, कौन व्यक्ति है जो कृष्ण कथा के प्रति आकर्षित नहीं होगा विना पशुघ्नात? केवल वो व्यक्ति जो पशु का हत्यारा हो। पशु का हत्यारे का तात्पर्य क्या है कि वैदिक यज्ञों में पशु हत्या होती है, गो हत्या होती है, उसके माध्यम से लोग स्वर्गलोक में जाकर भोग करने की कामना करते हैं। अर्थात जिनके मन में भोग की कामना प्रधानभूत है वो कृष्ण कथा से संबंध नहीं रखना चाहते, और क्योंकि हमारे मन में अभी भोग की भावना तीव्र है इसलिए कथा के प्रति रुचि जागृत नहीं होती। जिस स्तर तक हम भोग की प्रवृत्ति से मुक्त होंगे उतना ही कृष्ण कथा के प्रति रुचि और बढ़ेगी। इसलिए वर्णन आता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमतापकम भूवि गृणंती ते भूरि गाजना। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, तव कृथामृतम तप्त जीवनम, इस जगत के तप्त संतप्त जीवों के लिए कृष्ण कथा ही अमृत है, और ये अमृत स्वर्ग लोक के अमृत से, स्वर्गामृत और मोक्षामृत से भी परे है, क्योंकि ये भगवत धाम में सनातन जीवन प्रदान कर सकता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोपियों के इस गीत को लेकर इसका एक और दूसरा तात्पर्य देते हैं, जो कि सारार्थ दर्शनी टीका में वर्णन आता है कि कृष्ण कथा के साथ साथ कृष्ण का दर्शन न हो। गोपियां कह रही हैं, उनका भाव है कृष्ण कथा से संबंधित, कि कृष्ण कथा सुनकर कृष्ण के दर्शन करने की लालसा इतनी तीव्र हो जाती है और उसके पश्चात यदि कृष्ण के साक्षात दर्शन नहीं होते तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हम परेशान से हो जाते हैं। यदि प्रसादम से पूर्व आपको प्रसाद का वर्णन बताया जाए कि आज के प्रसाद में 15 आइटम है और ये फलाना फलाना आइटम है, शुद्ध घी में बना हुआ है, और विशेष रूप से आपके लिए 3-4 प्रकार के स्वीट्स भी बनाए गए हैं, और बहुत बढ़िया आपके लिए यहाँ पर पकोड़ा और समोसे की व्यवस्था की गई है, और आधा घंटा पूरा प्रसाद का वर्णन कर दें और फिर उसके बाद कीर्तन शुरू कर दें और 2 घंटा तक कीर्तन ही चलता रहे और दूर दूर तक प्रसाद के दर्शन नहीं हो, सब लोग चारों दिशाओं में देख देख कर थक गए क्या हुआ प्रसाद का, और जो कीर्तन गा रहे है उसको नोट भी भेज दो, भैया प्रसाद का क्या हुआ, कीर्तन तो ठीक है लेकिन अभी जो वर्णन हुआ उसका क्या। तो जब कोई सुस्वादु वस्तु का वर्णन होता है तो उस वर्णन के पश्चात उसके आस्वादन की इच्छा होती है। तो गोपियां कहते हैं कि इतना आपका सुंदर कथा है उसको सुनकर आपके दर्शन के लिए हमारे नेत्र तरस जाते हैं, और तब जाकर हमारे इस रासलीला को छोड़कर आप चले जाते हो और फिर हम इन नेत्रों से आपका दर्शन नहीं कर पाते, तो ये कथा अमृत नहीं है, विष है। तो कहते वो तव कथा अमृतम नहीं है, तव कथा मृतम, मृतम अर्थात ऐसा कथा मारता है। क्यों? तप्त जीवनम, जीवन अर्थात जल और तप्त अर्थात तेल, गरम तेल। तो कहते हैं कि आपके विषय में श्रवण करके हमारा हृदय गरम तेल की तरह जलने लगता है, और तब जाकर आपका संग विच्छेद या आप हमारा संग त्याग कर चले जाओ और आपका दर्शन न हो तो आपसे विरह की भावना पानी के समान उस तेल पर काम करती है। जब गरम गरम उबलते हुए तेल पर पानी छिड़को तो उस तेल का क्या होता है, विस्फोट होता है। तो वैसे कृष्ण कथा के ऊपर आपके विरह की भावना विस्फोटक परिणित होती है। तप्त जीवनम, तो कहते हैं कि अरे ऐसी बात है तो पूरे जगत में मेरी कथा की इतनी महिमा का क्यों गुणगान हो रहा है भाई? तो कहते हैं कवि भीर ईडितम, वो जो कवि लोग है ना, कवि मतलब कौन, कथाकार, उनका धंधा नहीं चलेगा नहीं तो, इसलिए वो लोग आपकी कृष्ण कथा का महिमा बोलते रहते हैं, नहीं तो सुनने वाले बैठेंगे नहीं, और उनका दूसरा काम ही क्या है, 4 लोग मिल गए तो शुरू, कवि भीर ईडितम। तो कहते हैं कवि भीर ईडितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम। तो अच्छा आप इतनी आलोचना कर रहे हो हमारी कथा की, लेकिन ये सब वास्तव में किसने आयोजित किसने किया है? तो कहते हैं श्रीमद आतकम, अर्थात वो जो बहुत धनवान लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा वगैरह है, वो लोग बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन करते हैं जिससे हजारों की संख्या में लोग आए श्रवण करें और फिर आपका दर्शन नहीं होगा, जीवन भर भटकते फिरेंगे कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है, मर जाएंगे। इसलिए वास्तव में उन लोगों का ये षड्यंत्र है कि किस तरह लोगों को मारना। सो दे आर लाइक पेड मर्सनरीज, वो वास्तव में लोगों की हत्या करने के मूड में इस तरह कथा का आयोजन करवाते हैं जिससे कि एक बार श्रवण करे तो व्यक्ति कथा से आकर्षित हो जाएगा, कृष्ण से जुड़ जाएगा और फिर कृष्ण तो जीवन भर प्रकट होगा ही नहीं, ये बेचारा भटकता भटकता पागल होकर न छोड़ सकता है न कुछ पा सकता है। तो इस तरह की अवस्था में वो लोग कथा करवाते हैं। भूवि गृणंति ते ये भूरी दा जना। तो कहते हैं भूरी दा का अर्थ क्या है? द अर्थात कहते हैं डेथ मृत्यु जो दमन कर दे, भूरी दा अर्थात भूरी भूरी बहुत बुरी तरह से मृत्यु की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। तो इस तरह ये गोपियां आलोचना कर रही हैं, लेकिन इसको कहते हैं व्याज स्तुति, अर्थात ये एक दृष्टि से स्तुति है कृष्ण कथा की शक्ति का कि कृष्ण कथा के माध्यम से व्यक्ति इतना खिंच जाता है इतना पागल हो जाता है कि कृष्ण के पीछे पागल हो के व्यक्ति वास्तव में बाकी अपने भौतिक जितनी इच्छाएं हैं उससे दूर हो जाएगा। इसलिए यहां पर भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्, औषधि के रूप में इसका वर्णन किया गया है। जैसे राधानाथ महाराज हमको हमेशा कथा बताते हैं न्यू वृंदावन में जन्माष्टमी की रात को अभिषेक हो गया आरती हो गई उसके बाद प्रभुपाद ने कृष्णा बुक खोला और भक्तों को कहा कृष्णा बुक पढ़ो और रात के 1 बजे फास्टिंग के बाद। सोचो अपना कथा का टाइम तो फिर भी अनुकूल है वो भी प्रसाद के बाद, रात को जन्माष्टमी के 1 बजे और प्रभुपाद ने कथा किसी भक्त को सुनाने कह दिया और प्रभुपाद आंख बंद करके सुन रहे हैं ध्यानस्थ पूरे कृष्ण कथा में लीन, लेकिन बाकी जितने भक्त थे सब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं सोते हुए। क्यों? क्योंकि कथा के प्रति इस तरह रुचि आना बहुत कठिन है। और जब पहला अध्याय समाप्त हुआ तो उनको लगा कि अब खत्म हो गया, तो सब लोग जय प्रभुपाद बोले। प्रभुपाद ने कहा नेक्स्ट चैप्टर, अगला अध्याय शुरू करो, और फिर सब भक्त लोग चुपचाप सुनने लगे। इस तरह 2-3 अध्याय चल रहा था, बहुत सारे सन्यासी लोग भी बैठे थे हाथ में डंडा सब गिर रहे थे नीचे नीचे। तो वास्तव में वृंदावन की लीला चल रही थी लेकिन लग रहा था कुरुक्षेत्र की भूमि में सब धाराशायी हो गए हैं। प्रभुपाद अचानक आंख खोले 3 अध्याय के बाद और देखा कि सब लोगों की अवस्था क्या है, तो अपने समक्ष दुर्दशा को देखकर प्रभुपाद कहने लगे लगता है भक्त लोग थोड़े थके हुए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा लगता है प्रसाद लेना चाहिए, और तब सबसे बड़ा जय प्रभुपाद हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो वास्तव में अब हम प्रेम के स्तर पर नहीं है, अंदर व्याधि है, और इसलिए जब जो औषधि लेंगे ये भव औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्, धीरे धीरे करके कथा के प्रति रुचि जागृत होती है, धीरे धीरे ये औषधि काम करती है और हृदय के अंदर जितने अनर्थ हैं उनका नाश करती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो अभद्र है व्याधि है उसका नाश करती है। और कोई तो मुझे बता रहा था कि भक्ति में आने के पहले मैं इतना चिंतित रहता था बहुत नींद आती थी, लेकिन जब से भागवत सुनने लगा हूं भागवत क्लास में सुनते सुनते मेरे सब अभद्र दूर हो गए हैं, अब बैठ के अच्छी नींद आती है। मैंने कहा कथा का ये तात्पर्य नहीं कि बैठ के सोना, तो कम से कम नींद तो आना शुरू हो गया। और कुछ समय के पश्चात उन्होंने कहा कि हाँ अब मुझे प्रीति जागृत हो रही है, गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, धीरे धीरे मन के अंदर परिवर्तन आ रहा है। इसलिए औषधि है, जिस तरह कोई व्यक्ति अपनी सामान्य बुद्धि से औषधि के नाना प्रकार के तत्वों और उनके विवेचन को समझ नहीं सकता, उसी प्रकार कृष्ण कथा किस तरह वैज्ञानिक ढंग से हृदय के अंतःकरण में हमारे रोम रोम में प्रविष्ट होकर कैसे हमारे हृदय के अंतःकरण में एक शुद्ध कृष्ण भक्ति को जागृत करेगा उसको समझ नहीं सकते। केवल स्वीकार करना है और अपने जीवन में उतारना है, भक्तों के संग में बैठकर श्रवण करना है, चाहे इच्छा हो अथवा नहीं। तो ये औषधि है। तीसरा वर्णन आता है, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, भगवान मेरे प्रेमी हैं, मेरे जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन साथ साथ वो मेरे रक्षक भी हैं, प्रोटेक्टर। मैं कृष्ण कथा इसलिए सुनना चाहता हूं बिकॉज कृष्णा इज माई प्रोटेक्टर, मेरे रक्षक हैं। और वो वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह कृष्ण ने हमारी रक्षा की। सबसे पहले वर्णन करते हैं कि मेरे पितामह जैसे अर्जुन इत्यादि की रक्षा कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में की, और उसके पश्चात मेरी मां जो मुझे गर्भ में लेकर धारण की, उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उस ब्रह्मास्त्र के आक्रमण से मेरा विध्वंस हो सकता था और मेरी मां का भी विध्वंस हो सकता था। तो उत्तरा उस समय भागते भागते कृष्ण के पास गई। कृष्ण कृष्ण महायोगीन देव देव जगतपते, हे कृष्ण कृपा करके आप मेरे इस गर्भ की रक्षा कीजिए। तो ऐसे गर्भस्थ माता उत्तरा उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर आक्रमण करता हुआ देखकर आर्तनाद करती हुई कृष्ण की ओर भागी, और कृष्ण उनकी निस्सहाय अबला अवस्था को देखकर उनका हृदय पसीज गया और कृष्ण स्वयं अपने चतुर्भुज रूप में उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। अंगुष्टम मात्रम अमलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपीव्य दर्शनम श्यामम तड़ित्वा ससमच्युतम। एक छोटे से नन्हे से चतुर्भुज रूप को लेकर जो कि अंगूठे के तुल्य उनका आकार था, स्फुरत पुरट मौलिनम नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित थे, उनका देह बड़ा जाज्वल्यमान था। तड़ित वाससम अच्युतम, उनका जो वास, उनका वेशभूषा सज्जा, वो सभी कोटि कोटि सूर्यों की तरह प्रकाशमान हो रहा था। भगवान के सुंदर रूप को देखकर नन्हे से परीक्षित इस तरह आकर्षित और प्रभावित हो गए कि गर्भ से निकलने के पश्चात जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की मां के गर्भ में जो उस छवि का दर्शन किया भूल नहीं पाए। और केवल जीवन भर भगवान श्री कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ये परीक्षा लेते रहे, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। तो इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण का उनके ऊपर बहुत बड़ा कृपा रहा। तो वो समझते थे कृष्ण ने मेरी रक्षा की। जो कृष्ण मेरे जन्म से पूर्व मेरी रक्षा किए हैं, अब ऐसी आपातकालीन परिस्थिति जब मुझ पर आन पड़ी है कि 7 रात और 7 दिन में तक्षक नाम का सर्प आकर मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो जो कृष्ण जन्म से पूर्व मेरी रक्षा किए वो अब इस मृत्यु के समय मेरी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस जगत के अन्य किसी सत्ता और शक्ति का आश्रय नहीं लूंगा, केवल उस कृष्ण का ही आश्रय लूंगा, क्योंकि मैंने अपने निजी जीवन में और अपने परिवार के जीवन में भूतकाल में देखा है कि कैसे कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए उन भगवान श्री कृष्ण का ही मैं श्रवण करने के लिए लालायित हूं। अर्थात कोई व्यक्ति भले जीवन काल में सुधरने के मूड में न हो और किसी को लगे अनर्थ हो तो हो, मुझे क्या करना, काम करो चलने दो, लेकिन मृत्यु से तो सब डरता ही है ना। तो फिर यदि प्रेम की इच्छा नहीं, शुद्ध होकर सुधरने की इच्छा नहीं, तो कम से कम मरने से तो डरो। और यदि मृत्यु का भय है तो यहां पे उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे कृष्ण उनके ही परिवार में कई लोगों को मृत्यु से बचाए, और इसलिए अब भी मुझे मृत्यु से वो बचाएंगे। तो एक और वो कारण दे रहे हैं कृष्ण कथा सुनने का, कृष्णा इज अवर प्रोटेक्टर। अर्थात धीरे धीरे वो कथा सुनने की जो प्रेरणा है या जो मोटिव है वो फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास, सेकंड क्लास से थर्ड क्लास होता चला जा रहा है। प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ कारण है, लेकिन वो नहीं है तो फिर औषधि के रूप में, वो नहीं है तो कम से कम मरने के डर से सुनो, और वो नहीं है तो चौथा कारण बता रहे हैं कि अंततो गत्वा कृष्णा इज द सुप्रीम बेस्टोवर। अर्थात हर प्रकार के जीवन के पश्चात जो नाना प्रकार से हमको अवस्थाएं प्रदान करेंगे वो भगवान ही करेंगे, सुप्रीम बेस्टोर ऑफ ऑल गोल्स। तो इसलिए यहां वर्णन आ रहा है कि अब मैं भगवान के संबंध में इसलिए सुनना चाहूंगा क्योंकि यदि भगवत धाम जाने की इच्छा हो, मुक्ति या मोक्ष की इच्छा हो, या इच्छा नहीं भी हो, स्वर्गलोक में जाने की इच्छा हो या कुकर शुकर बनने की इच्छा हो, वो इच्छा भी केवल कृष्ण ही पूरी कर सकते। इस तरह से कृष्ण कथा के प्रति मेरी बहुत रुचि है और अब मैं नौ स्कंद सुनने के पश्चात अब दशम स्कंद में कृष्ण के संबंध में साक्षात सुनना चाहता हूं। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न कर रहे हैं। याद रखना चाहिए, चार पांच दिवस निकल चुके हैं, नौ स्कंद अर्थात आधा श्रीमद् भागवत हुआ, तो साढ़े तीन चार दिन में नौ स्कंद पूरे हुए और फिर अंतिम साढ़े तीन चार दिन में ये 10, 11 और 12 स्कंद का निरूपण किया गया। पहले नौ स्कंद में 9000 श्लोक हैं, 10, 11 और 12 स्कंद में 9000 श्लोक हैं। अब परीक्षित महाराज दशम स्कंद सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वक्ता को कई बार सुनना पड़ता है श्रोताओं से कि मैं सुनने के लिए लालायित हूं, तो इसलिए बारंबार दोनों के बीच आदान प्रदान चलता रहता है। तो कभी वक्ता प्रश्न करते हैं तो कभी श्रोता अपने भावों को व्यक्त करते हैं। इस तरह परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में प्रीति का, प्रेम का बहुत आदान प्रदान चल रहा था। और वास्तव में परीक्षित उस समय आपातकालीन परिस्थिति में थे, जैसे कि कोई व्यक्ति रास्ते पर जा रहा हो और अचानक दुर्घटना हो जाए और वो रास्ते पर गिर जाए, गाड़ी कुचल जाए और उसका पैर बिल्कुल लहूलुहान हो जाए, और उसी अवस्था में पूरे विश्व का नंबर वन ऑर्थोपेडिक सर्जन उसी स्थान पर आ जाए और ऐसी आपातकालीन परिस्थिति में उसको सहायता दे, तो इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। परीक्षित की अवस्था कुछ ऐसी ही थी। तो अब आगे दूसरा जो कृष्ण कथा से संबंधित प्रश्न है, पहला तो था why आई वॉन्ट टू हियर कृष्ण, नाउ इज आस्किंग what डू आई वॉन्ट टू हियर रिगार्डिंग कृष्ण, कृष्ण के संबंध में मैं क्या सुनना चाहता हूं। तो परीक्षित कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये कृष्ण जो तत्व है बहुत रहस्यमय है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है और नाना प्रकार से विवादास्पद इसमें मुझे बातें दिखती हैं। तो कहते हैं कि चार बातें मुझे समझ में नहीं आती कृष्ण के संबंध में। पहला कि कृष्ण ने अपने घर परिवार के संबंध में जो कुछ भी किया सब जगह कहीं ना कहीं गड़बड़ किया। मतलब कृष्ण का जो आविर्भाव है, जन्म है और लीला है वो कोई नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ खोट या त्रुटि या गड़बड़ दिखता है मुझे, कृपा करके समाधान कीजिए। बोले पहला क्या, पहले अपने भाई बलराम को उन्होंने अपने मां के गर्भ से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। सुना है कि भाई भाई में झगड़ा होता है, जन्म के बाद होता है, ये तो जन्म के पहले ही शुरू हो गया है। जन्म के पहले उनके जीवन में हस्ताक्षेप आरंभ कि बलराम संकर्षण करके उनको वहां से खींच लिया और दूसरी जगह भेज दिया। तो ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। दूसरा, कोई भी शिशु जन्म के बाद अपने माता पिता के प्रति प्रेम व्यक्त करता है और सुनने में आया कि जन्म होते ही साथ माता पिता को छोड़ के दूसरी जगह चले गए और कई कई वर्षों तक लौट के नहीं आए। तो एक तो भाई के साथ गड़बड़ किया, फिर माता पिता के साथ गड़बड़ किया, फिर तीसरा मामा जी के साथ तो बहुत कुछ किया। मामा जी बेचारे प्रतिदिन प्रेम से बहुत सारे अच्छे अच्छे चलते हुए खिलौने भेजते थे वृंदावन में, है कि नहीं, अलग अलग आकार का। तो मामा भांजा का बहुत प्रेम रहता है तो मामा अपने भांजे के लिए खिलौने भेजता है, कुछ कुछ स्वतः चलित होता है, चाबी लगाओ या बटन चलाओ अपने आप चलता है। तो कंस तो बिल्कुल उस समय का सबसे श्रेष्ठतम खिलौने भेज रहा था, क्या क्या आकार लेके आ रहा था वो, पूतना, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, कोई छोटा बच्चा भी इतने खिलौने का रेंज कल्पना नहीं कर सकता। सब दिखने में अद्भुत, काम करने में अद्भुत, अलग अलग प्रकार से वो आ रहा था और कृष्ण बड़े प्रेम से वो एक एक खिलौने को उठा के तोड़ रहे थे अलग अलग ढंग से। तो बच्चों को खिलौने के तोड़ने में मजा आता है और जब खिलौने टूटते हैं तो माता पिता मामा नए खिलौने भेजते हैं। तो एक एक खिलौने टूट रहे थे, मामा जी नए नए भेज रहे थे और पहले मामा जी के खिलौने के तोड़े, बाद में मामा जी को ही तोड़ दिया। तो बोले कमाल है, ऐसा क्यों किया इन्होंने? कोई भांजा मामा के साथ ऐसा आदान प्रदान करता है क्या? खिलौने ठीक नहीं लगे ठीक है, इसका अर्थ ये थोड़ी कि मामा को ही तोड़ दो, ऐसा क्यों किया? और चौथा, कहते हैं कि विवाहित जीवन में व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए और पूरे विश्व के समक्ष आदर्श स्थापित करने के लिए प्रकट हुए। तो रामचंद्र जी के जीवन में तो मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि इन्होंने प्रस्तुत की और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए 16,108 रानियां एक साथ घर में ला दी और 16,108 के साथ वो निवास कर रहे थे। तो ये सब बातें उनके पारिवारिक जीवन के संबंध में अपनी कुछ समझ में नहीं आती, तो इसके लिए थोड़ा विस्तारित हमको उत्तर चाहिए, तो ये मैं सुनना चाहता हूं। तो ये उनका दूसरा प्रश्न था, व्हाट डू आई वांट टू हियर रिगार्डिंग कृष्ण। तो तीसरा उनका अब प्रश्न है कि ये सब मैं जो पूछा हूं तो फिर अब परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के मन में आएगा कि अच्छा ये सब प्रश्न का उत्तर तो मैं देना है, लेकिन मैं संक्षेप में दूं कि विस्तारित रूप से दूं, क्योंकि बेचारा भूखा है, प्यासा है और ये सब गड़बड़ में पड़ा तो प्यास की वजह से ही। प्रथम स्कंद में प्यासा घूम रहा था और शमीक ऋषि के आश्रम में गया और शमीक ऋषि ने पानी नहीं पिलाया तो उठा के जो मृत सर्प है उसको गले में डाल दिया। प्यास ही इस श्रीमद् भागवत कथा का कारण है। सब गड़बड़ शुरू हुई तो प्यास से और 3.5 दिन बीत गए हैं, प्यासा है सामने, अब पता नहीं क्या करेगा। प्यासा व्यक्ति है, पहले एक रिकॉर्ड खराब है प्यास के संबंध में, अब फिर मैं इसको प्यासा तरसा रहा हूं, केवल कथा ही कथा सुना जा रहा हूं, बीच में पूछ भी ना रहा हूं प्रसाद चाहिए क्या। तो करे तो क्या करें, कथा को संक्षेप में मिटाकर प्रसाद की व्यवस्था करें या कथा चलते रहे, ऐसा अगर मन में आए तो परीक्षित कह रहे हैं कि मैं किस तरह से कथा सुनना चाहता हूं, हाउ डू आई वॉन्ट टू हियर। तो कह रहे हैं वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम, कि हे परीक्षित, हे सुखदेव गोस्वामी, आप कृपा करके ये जो कथा है विस्तारित रूप से बताइए। और मैंने केवल कुछ प्रश्न किए हैं। तो कह रहे हैं एतत् अन्यच्च सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम, लेकिन कई ऐसे प्रश्न होंगे जो मेरी सीमित बुद्धि और मस्तिष्क से परे है, लेकिन आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। कृष्ण के संबंध में मैंने जो प्रश्न किए अथवा जो प्रश्न नहीं किए वो सब विस्तारित रूप से बताइए, डिटेल में बताइए, चिंता मत कीजिए। कैसे विस्तारित रूप से? और अगला प्रश्न है कि कब मैं बताऊं और कब आरंभ करूं, कब समाप्त करूं। तो कह रहे हैं नई शांति दुस्सह क्षुणमाम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोज च्युतम हरिकथामृतम। हे सुखदेव गोस्वामी, आपके मुखारविंद से जो कृष्ण कथा का प्रसारण हो रहा है, जो कृष्ण कथा की अमृतवाणी, जो कि अमृत की वेगवती सरिता के तुल्य है, वो जो आपके मुख से प्रवाहित हो रही है, वो मेरे कर्ण रंध्रों के माध्यम से मेरे चित्त को जो सुकून और आनंद की अनुभूति दिला रहा है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। नई शांति दुस्सह क्षुण्मान त्यक्तोदम अपि बाधते। तो मैं पिछले 3.5-4 दिनों से भूखा हूं, त्यक्त उदम अपि बाधते, भूख से अधिक कठिन है प्यास। मैंने एक बिंदु मात्र जल भी प्राशन नहीं किया पिछले 4 दिनों में, लेकिन बाधते ये सब मेरी भक्ति में बाधा नहीं बन रहे हैं। क्यों? भूख और प्यास तो बहुत खतरनाक वैरी हैं, जो हमारे दिल के चैन को नष्ट कर देती हैं। बहुत कठिन है, इनको त्यागना बहुत कठिन है। और भक्ति में हम लोग देखते हैं कि प्रसाद न हो तो कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। और आरंभ के दिनों में इतनी हमको आदत नहीं होती सुबह उठने की, तपस्या करने की, केवल सीमित समय प्रसाद खाने की। तो सुबह सुबह मंगल आरती से ही प्रसाद की याद आने लगती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो गाते तो भी लगता, अरे 3 घंटा और है अभी उसके लिए। दुखी हो जाता है मन। तो मन में जब भूख और प्यास को मिटाना इतना महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, तो ये सब छोड़कर त्याग कर बैठे हैं ये। पिबंतम त्वन मुखाम भोजम चुतम हरि कथामृतम। ये शक्ति कहां से प्राप्त हो रही है? क्योंकि आपके मुख से कृष्ण कथा जो प्रवाहित हो रही है, उससे मुझे शक्ति मिल रही है। तो कृपा करके आप ये कृष्ण कथा सुनाते रहें। इस तरह से वो यहां इस श्लोक में इनका वर्णन कर रहे हैं। तो यहां श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि जो चंद्र है अमृत का स्रोत है, और चंद्र से 3 बातें प्रकट होती हैं। जो अमृत शब्द है यह चंद्र का सूचक है, वो कह रहे हैं। तो अमृत चंद्र से छलकता है, तो इसलिए वर्णन आता है कि एक तो चंद्रमा से अमृत छलकता है, दूसरा चंद्र को देखकर हृदय में उल्लास जागृत होता है, और तीसरा चंद्र अंधकार का विनाश करता है। इस तरह से ये हरि कथामृतम ये हमारे चित्त के अंधकार को दूर कर हृदय में उल्लास फैलाता है। तो इस तरह यहां पर भगवान श्री कृष्ण किस तरह से प्रकट होते हैं और किस तरह से लीला करते हैं, ये सब जानने के लिए, सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। इस तरह से शिला सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रेरणा कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। इसको सुनकर सुखदेव गोस्वामी का उत्साह बढ़ रहा है। तो ये साधना से संबंधित कुछ बातें थी कि यदि हमको अपने भक्ति में तीव्र गति से आगे प्रगति करना है तो हमारी साधना तीव्र होनी चाहिए, और विशेष रूप से प्रभुपाद के बुक्स हम भली भांति पढ़ना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, ध्यान पूर्वक उसमें जो बातें दी गई हैं उस तत्व ज्ञान का विवेचन करना चाहिए, भक्तों के संग में आदान प्रदान करके उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद ने हमको ये बुक्स दिए हैं, ग्रंथ दिए हैं। तो हम लोग उन बुक्स को खरीद कर रख लेते हैं। कई बार मैं लोगों के घरों में जाता हूं और भागवत मानता हूं, कोई 4th कैंटो दो, 3rd कैंटो दो, तो ब्रांड न्यू बक्सा खोलते हैं वो लोग और अंदर से प्लास्टिक फाड़ के निकालते हैं। मैं बोला कितने साल पहले लिया था? बोला हो गए 5 साल हो गए। बोला अभी तक खोला नहीं? बोला नहीं, नहीं आपके लिए रखा था हमने, लेकिन आप पढ़े क्यों नहीं? बोले टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला, और इसलिए वो अब तक यहां रखा हुआ है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बुक्स दिया है पढ़ने के लिए, आश्रय लेने के लिए। और यदि इन बुक्स को हम नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समय के बाद वो साधना शिथिल पड़ जाएगी। तो परीक्षित महाराज अपने प्रश्नों के माध्यम से इस बात का बहुत महत्व प्रदर्शित कर रहे हैं कि कैसे हमको इस श्रीमद् भागवत का, चैतन्य चरितामृत और इन ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। एक एयरपोर्ट पर कोई प्रभुपाद के साथ बहस कर रहा था, रिपोर्टर, वो कह रहा था प्रभुपाद को, आपके जो भक्त लोग हैं वो सब हर एयरपोर्ट पे किताब बांटते रहते हैं, उनका दिन रात यही काम लगता है, लोगों के बस जरूरत हो ना हो हाथ में किताब टिका दो। क्या है वो लोग? आपके सब वो लोग जो हैं किताबी कीड़े हैं, दे आर ऑल अ बंच ऑफ बुक वर्म्स। तो प्रभुपाद ने कहा वो बुक्स नहीं पढ़ोगे यू विल बिकम स्टूल वर्म, विष्ठा के कीड़े बन जाओगे, इसलिए किताबी कीड़ा बढ़ना ज्यादा अच्छा है। और वो भी जो श्रीमद भागवत है उस ग्रंथ का आश्रय लेना तो कितना महत्वपूर्ण है। तो ये महाराज परीक्षित अपने प्रश्न के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन करते समय कहते हैं, कृष्ण का यते का खेला सर्वोत्तम नर लीला नर वपु यहार स्वरूप गोपवेश वेणुकर नर वपु नटवर तहा प्रभु नर अनुरूप। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कई कई अवतार लिए, लेकिन कृष्ण ने जो ये मानव का रूप धारण किया या मानवी ढंग से वो प्रकट हुए, कृष्ण रयते का खेला, कृष्ण कई कई प्रकार से खेले हैं, कई कई प्रकार से अवतार लिए हैं। और अभी हम कुछ समय पहले गए थे आदि वराह और श्वेत वराह के मंदिर में, वराहदेव के रूप में भी वही कृष्ण जन्मे हैं। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण वराह के रूप में, मत्स्य के रूप में, कुर्म के रूप में, नरसिंह के रूप में, नाना प्रकार के रूपों में प्रकट हुए। लीलाशुक बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, यद रोम रंद्र परिपूर्ति विधाव दक्ष वराह जन्म नि बभुवरमि समुद्र। कि इस वराहदेव के आकार की कल्पना करना चाहते हो, ये वराहदेव कितने विशाल थे ये जानना चाहते हो, तो विचार करो वराहदेव का साइज या आकार क्या था। यद रोम रंध्र परिपूर्ति विधाव दक्ष, वराहदेव के त्वचा का एक रोम छिद्र, एक रोम कूप जिसमें से बाल निकलता है, रोम छिद्र एक, वो एक रोम छिद्र वराहदेव का इतना विशाल था कि पूरे विश्व के समस्त सागर का जल उसमें यदि डाल दिया जाए तो भी वो आप्लावित नहीं होता। सोचो पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, ये ओशन वो ओशन, जितना सागर है, वो जितने सागर का जल है वो सब वराह देव के एक रोम छिद्र में डालो तो भी वो पूरा नहीं होगा, फिर भी जगह बचेगा। तो ये केवल एक रोम छिद्र हुआ, तो सोचो उनका आकार या साइज क्या होगा। कल्पना कर सकते हैं क्या? कल्पना से परे है, ज्यादा कल्पना करेंगे नींद आ जाएगी। यद रोम रंध्र परिपूर्ति विधाव दक्षा वाराह जन्मनि बभू व रमी समुद्र, तो पूरे समुद्र का जल उसमें डाल दिया, एक रोम छिद्र भरने रहा, इतना विशाल है वो। वही कृष्ण प्रकट होते हैं, तम नाम नाथम अरविंद दृशम यशोदा पानीर द्वयंतम स्नपयाम बभुव। वही कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं वराह देव, नंद नंदन के रूप में, यशोदा नंदन के रूप में जब वही वराह देव प्रकट होते हैं भगवान साक्षात कृष्ण के रूप में। यशोदा माई एक छोटा सा बाल्टी पानी लेती है और छोटा सा बाल्टी पानी लेके पलटा देती है उसके ऊपर और लाला का स्नान समाप्त। केवल छोटे से बाल्टी के जल से उनका स्नान समाप्त हो गया। और वही वराहदेव के रूप में आते हैं तो सागर का सारा जल आप डालो तो भी उसमें समाविष्ट न हो। तो वही कृष्ण है, वही भगवान है, वही भगवान है। इसलिए कहले कृष्ण यते का खेला, कई कई प्रकार से खेले हैं ये, सर्वोत्तम नर लीला, लेकिन सर्वोत्तम है नर लीला। नर वपु यहर स्वरूप, जब नर का वपु नर का रूप धारण करके वो प्रकट हुए हैं तो आगे कह रहे हैं गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर। गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, तो गोपवेश धारण करके, गोप वेश हाथ में वेणु धारण करके, नव किशोर तो उनका नव किशोर लीला, नटवर ये सब बहुत लुभायमान है, आकर्षक है, नरी लीला होए अनुरूप। तो इसलिए इस जगत के मनुष्यों के चित्त को आकर्षित करने के लिए अनुरूप है, अनुकूल है। अर्थात कोई भी सामान्य व्यक्ति जो मनुष्य जाति में है, मनुष्य योनि में है, वो वराह देव के विषय में सुनकर कोई प्रीति नहीं जागृत होगी, लगता नहीं कि वराह देव के साथ अपना कुछ कनेक्शन है कि नहीं, मत्स्य के साथ, ठीक है मछली है, महान है, ठीक है, लेकिन हृदय में कुछ भाव पैदा नहीं होते कि हो मत्स्य है, ओहो कितना आनंद आ रहा है सुन के, विचार करके, वो भाव जागृत नहीं होता है। ठीक है, जिनको बीभत्स रस पसंद है, नरसिंह का सुनकर थोड़ा लगता है हाँ भाई बचाएंगे हमको, तो धीरे धीरे भाव प्रकट होने लगते हैं, लेकिन जब कृष्ण के रूप में वो प्रकट होते हैं तो सामान्य मानव किस तरह से जन्म से लेकर अंत तक अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं का अनुभव करता है, वो कृष्ण के अवतार में हर पहलुओं का अनुभव हमको दिखने को मिलता है विस्तारित रूप से, हर प्रकार के रसों का आस्वादन। इसलिए नरलीला होए अनुरूप कृष्ण कथा के माध्यम से चित्त का आकर्षण होना सर्वाधिक संभव है। इसलिए नाना प्रकार के लीलाओं में, नाना प्रकार के अवतारों में कृष्ण के अवतार को श्रेष्ठतम बतलाया गया है। तो अब यहां पर कंस का वर्णन आ रहा है कि कैसे कंस देवकी और वसुदेव के बीच में बाधा बन गए। आकाशवाणी हो गई कि आठवां पुत्र मृत्यु का कारण बनेगा। अब वसुदेव कंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको मैं प्रचार से संबंधित चुनौती कहता हूं। वो कैसे? क्योंकि जब हम प्रचार करने जाते हैं तो नाना प्रकार कंस जैसे तत्व मिलेंगे जो कि हमारे कृष्ण भक्ति का विरोध करेंगे, कृष्ण भक्ति में बाधा बनेंगे। इसलिए कई बार नाना प्रकार से हमको काम करना पड़ता है। तो जैसे कंस ने अपने हाथ में तलवार ली और देवकी का सर काटने के लिए वह आतुर थे, तत्पर थे, तब वसुदेव तुरंत कंस को समझाने का प्रयास करते हैं और तीन प्रकार से उनको शांत करने का वो प्रयास किए। प्रचार का अर्थ है कि किसी आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति के चित्त को परिवर्तन करके उसको अनुकूल बनाना। तो यहां पर कंस हाथ में तलवार लिए खड़े थे और वसुदेव की चुनौती थी कि वो कैसे कंस के चित्त को बदले। तो सबसे पहले उसने किसका आश्रय लिया? डिप्लोमेसी या कूटनीति। तो कहते हैं श्लाघनीय गुण शुरैर भवान भोज यशस्कर। कंस की स्तुति कर रहे हैं, श्लाघनीय गुण शुरैर, अरे भोज के वंश के प्रदीप, श्रेष्ठतम महारथी योद्धा, सर्वगुण संपन्न, श्लाघनीय आपके गुणों की तो क्या बात है, 14 लोकों में कोटि कोटि जिह्वाओं के साथ आपकी कोई स्तुति करे तो भी आपकी लीलाओं का अंत नहीं होगा। अब कोई कहेगा ये तो अतिशय उक्ति हो गई, ये स्तुति कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, क्या वसुदेव वास्तव में कह रहे हैं? नहीं, इसको कहते हैं कूटनीति, डिप्लोमेसी। अर्थात वो कुछ तो कह रहे हैं लेकिन मन में बात दूसरा है। क्यों? क्योंकि वो कंस को केवल शांत करना चाहते हैं, उसको कहते हैं सम। तो सम, भेद, दान, दम, ये सब राजनीति के अलग अलग पहलू हैं। तो इस तरह से कंस के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रबोधानंद सरस्वती भी कहते हैं, हे साधवो सकलम एतद विहाय दूरम चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। कि यदि आपको चैतन्य चंद्र के चरणों का आश्रय प्राप्त करना हो तो कई बार कर्मी लोगों के पास जाकर उनके सामने झुकना पड़ता है और कहना पड़ता है, हे साधवो, ओ जेंटलमैन, आप कितने महान हो। प्रभुपाद भी कहते हैं कि भले मन में आपको लगे ये तो बिल्कुल असुर है, लेकिन फिर भी ऊपर से बोलते समय हम इस तरह से कह देते हैं। तो एक दृष्टि से कहा जाए तो सरलता का सूचक नहीं है, मन में कुछ बात है और वाणी में कोई और बात है। लेकिन ये प्रचार के लिए आवश्यक होता है क्योंकि व्यक्ति अपनी स्तुति चुनना चाहता है और उस स्तुति के माध्यम से यदि वह भगवान का भक्त बने तो फिर और क्या कर सकते हैं, भगवान का भक्त बनाना श्रेष्ठ है। तो इसलिए वसुदेव कह रहे हैं कंस को, श्लाघनीय गुण शुरैर, आप तो गुणों के खान हो, हर प्रकार के गुण आपके अंदर हैं, इस तरह से। तो कई बार हम लोग किताब वितरण में जाते हैं तो लोग अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल होते हैं, तो उनको बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलनी पड़ती है, और कई बार कुछ इस तरह से काम करना पड़ता है जिससे कि लोग उस संदेश को स्वीकार करें। तो पहले जब किताब वितरण में, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में आने के तुरंत बाद हम कुछ भक्तों के साथ जाते थे, तो मंदिर के आसपास बहुत सारे बिल्डिंग है जहां हम लोग जाते थे, और लोग अपने घर के दरवाजे के जो होल से देख लेते थे कौन आया है बाहर, और दिख गया कि शेव ढेड खड़ा है तिलक लगा के, अंदर से बोल देंगे सब किताब है हमारे पास, भाग जाओ, गीता चाहिए नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, सब है हमारे पास, चाहे तो दो चार आपको दे देंगे, भागो यहां से, कोई खोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि हरे कृष्ण वाला आया है तो कोई बुक दे के ही जाएगा। तो कई बार मैं अपने साथ एक नॉर्मल कॉलेज के लड़के को लेकर जाता था, बाल वाला, उसको सामने खड़ा कर देता, मैं साइड में हो जाता, घंटी बजाता, अंदर से वो देखता, उसको लिखता बाल वाला कौन आया, खोलता हूं, जैसे खोलता मैं अंदर घुस जाता था, बोलते तुम यहां साइड में क्यों छुपे थे, बोले नहीं तो आप खोलोगे ही नहीं, अब खोलेंगे नहीं तो फिर आपको दिखाएंगे क्या बुक और बातें क्या करेंगे। तो कोई कह सकता है ये तो छल है, ये कूटनीति है, उचित नहीं है, लेकिन ये संदेश देना इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार जैसे कंस के साथ वसुदेव ने व्यवहार किया वैसे व्यवहार करना पड़ता है। दूसरा है, इतना सब कहने के पश्चात अब अधिकांशतया व्यक्ति इन सब बातों से मानेगा तो ठीक है, नहीं माना तो कंस तो मानने के लिए तैयार नहीं था, तो वसुदेव एक स्तर आगे बढ़े। तो कूटनीति से काम नहीं बनती तो लॉजिक या तर्क का प्रयोग वसुदेव ने किया, और वसुदेव कहने लगा कि तुम मृत्यु से घबराते हो कंस, अरे इस शरीर के साथ मृत्यु तो अपने आप ऑटोमेटिक पैकेज के साथ आता है, कब तक बचोगे, बचोगे तो कब तक बचोगे, अरे आकाशवाणी के अंतर्गत मर जाओगे तो अच्छा है। इस तरह मृत्यु का भय पैदा करने का प्रयास किया कि मृत्यु तो निश्चित है, तो इसको कहते हैं तर्क। तो कभी लॉजिक का प्रयोग करना पड़ता है प्रचार में, तर्क के माध्यम से लोग फिर कई बार समझते हैं कि हाँ मैं जिस आधार पर जीवन जी रहा हूं वो उचित नहीं है। प्रभुपाद भी तर्क के प्रयोग में बहुत निपुण थे, बहुत श्रेष्ठ थे, और कई लोगों को वो तर्क के आधार पर वो हरा देते थे। जैसे प्रभुपाद बड़े बड़े वैज्ञानिक के साथ आदान प्रदान करते समय कहते थे, पूछते थे तो बताओ वैदिक सभ्यता में दिया गया है वैदिक शास्त्रों में कि सूरज चंद्र से पास है पृथ्वी के, सूरज ज्यादा निकट है चंद्र दूर है, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक बिल्कुल झल्ला जाते थे, क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, सूरज तो दूर है, नहीं सूरज पास है, तो बोलते कैसे, तो प्रभुपाद बोलते थे बताओ हफ्ते के जो दिन है संडे मंडे ट्यूजडे उसमें पहला कौन सा आता है, संडे की मंडे, तो बोलते संडे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सन पास है, बोले ऐसा कैसे यार ये कभी सुना ही नहीं हमने, तो प्रभुपाद तो बताओ संडे पहले क्यों है बताओ, और बड़े बड़े पीएचडी वैज्ञानिक सर खुजलाते रह जाते कि हमने कभी सोचा नहीं संडे पहले क्यों है, प्रभुपाद ने कहा आपको पता नहीं क्या, इसलिए है वो, और बड़े बड़े वैज्ञानिक चले जाते बोलते अपने शिष्यों को कि तुम्हारे गुरु के पास तर्क तो बड़ा विचित्र है, उसको काटने के पाल लिए भी हमारे पास तर्क नहीं है, लेकिन पूरा विश्वास भी नहीं होता, लेकिन कम से कम हम चुप होके जा रहे हैं। और प्रभुपाद बोलते देखो मेरे पास पीएचडी नहीं कुछ नहीं, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक आके हार मान के जा रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं। तो तर्क बहुत आवश्यक है, और प्रचारक को चाहिए कि वो तर्क में निपुण हो, क्योंकि कई लोग तर्क के द्वारा काटे जाने पर ही बात को स्वीकार करेंगे। कंस इस बात से भी नहीं माने तो फिर आगे सिद्धांत का प्रयोग किया, वो है फिलॉसफी। सो व्हेन डिप्लोमेसी लॉजिक थर्ड स्टेप इज फिलॉसफी। तो उन्होंने सिद्धांत का प्रयोग किया, कहने लगे आत्मा अमर है, अजर है, नित्य है, शाश्वत है, आकाशवाणी में वर्णन किया गया है कि आठवां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन मृत्यु क्या होती है, मृत्यु तो कुछ होती नहीं है, तुम तो आत्मा हो, सनातन हो, नित्य हो, शाश्वत हो, किस बात का भय है तुमको, केवल ये कंस का शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाओगे, और नाना प्रकार के उदाहरण देके कंस को समझाने फुसलाने का प्रयास किया। तो ये फिलॉसफी है अर्थात सिद्धांत। तो इस तरह ये तीन स्तर होते हैं किसी को समझाने के। और जब हम वास्तव में इस तरह से दूसरों को समझाएं बुझाएं और प्रयास करें तो हो सकता है उनका चित्त परिवर्तित हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमारे साधना से संबंधित है। और अगला जो वर्णन आ रहा है वो मैं जन्माष्टमी में पहले सुना चुका हूं कि किस तरह से हमारे सेवा में नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। और यहां पर कंस के सामने भक्ति के बचाव के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। देवकी भक्ति का प्रतीक थी, भक्ति का प्रतीक साक्षात खड़ी है और कंस के हाथ में तलवार है। तो साधक को चाहिए कि येन केन प्रकारेण अपने हृदय के अंदर स्थित भक्ति को बचाए, चाहे उसके लिए कोई भी मूल्य क्यों ना हमें देना पड़े। और वसुदेव ने किस तरह से देवकी को बचाने के लिए संघर्ष किया, उस तरह साधक को अपनी भक्ति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भक्ति का अनुवाद करते हैं डिवोशनल सर्विस, अर्थात भक्तिमय सेवा। तो भक्तिमय सेवा से संबंधित जो चुनौतियां आती हैं, जब कंस रूपी तत्व मन के अंतःकरण से संशय और नाना प्रकार के दूसरे प्रदूषण के तलवार के रूप में उसका विध्वंस करने का हमको चुनौती देते हैं, उस समय साधक को चाहिए कि उसका मन और उसका मस्तिष्क और उसकी दृढ़ता बिल्कुल प्रबल रहे। और इस तरह यहां पर वसुदेव ने ये बहुत सुंदर प्रकार से चुनौती का सामना किया। तो पहला उन्होंने दिखाया निश्चय या डिटर्मिनेशन, इस बात का पूरा पूरा निश्चय था कि भले कंस मेरे सामने खड़ा हो इस तरह तलवार लिए, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, अंततो गत्वा जो भी हो देवकी के साथ जो होगा अच्छा ही होगा, भला होगा। इसे कहते हैं निश्चय, डिटर्मिनेशन, कि भक्ति के संबंध में जो कुछ भी होगा चाहे एक दृष्टि से वो बुरा लगे लेकिन फिर भी अंततो गत्वा वह अच्छा ही होगा। जब प्रभुपाद के कुछ शिष्य प्रचार कर रहे थे आरंभ के दिनों में, उनको पुलिस पकड़ के जेल भेज दी, तो प्रभुपाद के पास आके लोग कहने लगे तो जेल भेज दिया अब क्या होगा। प्रभुपाद ने कहा उनको कहो जेल में प्रचार शुरू करे, तो जेल में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन और प्रचार शुरू कर दिया। और देखते देखते जेल में भक्तों की संख्या डबल ट्रिपल हो रही थी, जेल के अधिकारी घबरा गए, तुरंत सभी भक्तों को रिलीज कर दिया। बोले अभी तो जेल खाना है, ये लोग रहेंगे तो पागलखाना बन जाएगा ये। और प्रभुपाद के पास आके बोले हम लोग को छोड़ दिया। तो प्रभुपाद ने कहा मैंने कहा था पहले ही कि भक्ति के संबंध में कई चुनौतियां आएंगी लेकिन भक्त के मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो अब देखिए वसुदेव के पास अधिक समय नहीं है, कंस के हाथ में तलवार है, एक झटका मारेगा तो बस देवकी का सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो कई बार अपने भक्ति के जीवन में परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि लगता है कि बस कुछ ही क्षणों में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो निश्चय होना चाहिए। गिरिराज महाराज के माता पिता बहुत दुखी होकर उनको घर पर पकड़ लिए और एक साइकेट्रिस्ट को बिठा दिया उसके साथ, और साइकेट्रिस्ट उनको बहुत सारे प्रश्न पूछने लगी, कहने लगे कि क्या बात है तुम सब कुछ छोड़ के चले गए, आपका कुछ क्या माता पिता का प्रॉब्लम था क्या। तो उन्होंने उत्तर दिया माता पितामह से जगत माता धाता पितामह, पिता माता सब कृष्ण ही है। तो बोले तुम्हारे बचपन में कुछ प्रॉब्लम था क्या। तो बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, असली प्रॉब्लम तो एक ही है। जो भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर गीता के श्लोक से। साइकेट्रिस्ट आधे घंटे में बाहर भागी भागी आई और माता पिता को कहा अपने बच्चे को ले जाओ नहीं तो उसके संग में मैं हरे कृष्ण बन जाऊंगी, एंड योर सन इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। बोले हमेशा के लिए इन्फेक्ट हो गया है वो। प्रभुपाद अगले तीन चार दिन अपने रोज भागवत क्लास में कहते थे दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ साइकेट्रिस्ट, अवर गिरिराज इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। कि इस तरह का प्रभाव है कि वो छूटेगा नहीं, अर्थात एक बार हम भक्ति के संग में आ गए हैं तो चुनौतियां भले आए लेकिन दृढ़ता होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन, दूसरा है डिसाइसिवनेस, अर्थात हमको कुछ करना है तो उसके विषय में हमको तुरंत एक्शन लेना है। ये नहीं कि बस चलते चले गए और कल करेंगे परसों करेंगे और इस तरह हम शिथिल हो गए बैठे रहे, तुरंत कुछ करना है और जो कुछ भी आवश्यक हो वो करना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, डिसाइसिव, जो अनुकूल है भक्ति के लिए करो, प्रतिकूल है उसके साथ संघर्ष करो। तो अब वसुदेव विचार करने लगे, अब ये कंस तो मान नहीं रहा है लेकिन मुझे जरूर कुछ करना है, चुपचाप बैठा रहूंगा तो कुछ ही क्षण में देवकी का सर धड़ से अलग होकर धरती पर गिरेगा। प्रभुपाद मेक्सिको में वॉक पे जा रहे थे, श्याम सुंदर प्रभु उनके साथ थे और अचानक सामने से एक व्यक्ति दारू पीकर यूं घूमता घूमता प्रभुपाद के सामने झूमने लगा और श्याम सुंदर प्रभु ने सोचा प्रभुपाद इसको कैसे प्रचार करेंगे, इसको कैसे समझाएंगे। और प्रभुपाद के पास आते जा रहा था, प्रभुपाद अपने हाथ में छड़ी लिए थे, छड़ी उठाए थड़ा करके एक सर पे दिया उसके और चुपचाप आगे निकल गए। एक झटके में दिया, किसी को दिखा भी नहीं कि मारा करके, एक झटका मारा और निकल गया और व्यक्ति नीचे गिर गया। और श्याम सुंदर तो बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे थे, ये बड़ा प्रचार का अलग टाइप था इनका। अब प्रभुपाद ने कहा नशे में था, समझेगा नहीं कुछ, इसलिए कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल डराते हुए सामने आ रहा था तो प्रभुपाद ने इस तरह से उनके साथ आदान प्रदान किया। तो श्याम सुंदर प्रभु को साक्षात्कार कर तो बता रहे थे प्रभुपाद जब कुछ निर्णय लेते कुछ करने का तो कोई उनको रोक नहीं सकता था, डिसाइसिव, अभी ये अवस्था में ये करना है करना है, करके आगे बढ़ो बस। तीसरा है वसुदेव विचार कर रहे थे कि चाहे मैं कितना भी करूं प्रयास लेकिन अंततोगत्वा दैव या डेस्टिनी उसको कोई काट नहीं सकता। तो डेस्टिनी बहुत शक्तिशाली है और इसलिए जो देवकी के भाग्य में होगा वो तो होगा ही, लेकिन कम से कम मैं अपना प्रयास करता हूं। तो इसलिए कई बार भक्त जब सेवा में हतोत्साहित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सेवा करते समय मैं विचार करता हूं कि मैं सेवा कर रहा हूं, आई एम द डूअर। तो इसलिए उस सेवा से जो फल निकलता है मुझे लगता है मैंने इस फल को कमाया, और यदि वह सेवा विफल हो जाए तो मुझे लगता है कि मैं हार गया। लेकिन सेवा करते समय ही विचार करें मैं केवल प्रयास करूंगा, बाकी कृष्ण ही चला रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, फल भी देने वाले वही हैं, तो उस सेवा में विफलता भी आए तो हम हतोत्साहित या हतप्रभ नहीं होते। इसलिए सेवा करना चाहिए, वसुदेव प्रयास कर रहे थे लेकिन फिर भी इस बात को भूले नहीं कि अंततोगत्वा देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी, अर्थात भाग्य विधाता है। लेकिन चौथा यह भी नहीं कि सब कुछ भाग्य पे छोड़ दो और प्रयास मत करो। तो चौथा पॉइंट है डिलीजेंस, अर्थात प्रयास, भरपूर प्रयास। तो भले ही भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी, फिर भी वसुदेव ने छोड़ने दिया, अरे आकाशवाणी हुई है मैं क्या करूं, कंस के हाथ में तलवार है, देवकी उसके पास है, अब तलवार चलने वाली है, देवकी का सर धड़ से अलग होने वाला है, आकाशवाणी हो ही गई थी, चलेगा, मेरा तो विवाह अभी अभी हुआ है, संग भी नहीं हुआ है, दूसरी पत्नी ला दूंगा, प्रॉब्लम क्या है। तो वसुदेव खड़े होकर रनिंग कमेंट्री नहीं दे रहे थे कि क्या हो रहा है, अभी मेरे सामने कंस खड़ा है, उसके हाथ में तलवार है, तलवार अब नीचे आ रही है और देवकी का सर धड़ से अलग होने वाला है और ये हो गया, वो चाहे तो बैठकर कमेंट्री दे सकते थे, लेकिन उन्होंने विचार किया नहीं मुझे कुछ करना है, भले भविष्यवाणी हुई प्रयास करना है। तो भक्त कई बार जानता है कि इस प्रयास को हर प्रकार से करने पर भी विफलता आएगी, कई बार चुनौतियां ऐसी रहती हैं, हमको लगता है मैं कितना भी प्रयास करूं इस सेवा में, इस जगत की दृष्टि से तो सफलता कभी नहीं मिलने वाली, अभिमन्यु वाली बात है, चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहा हूं, हमारे अथॉरिटी, हमारे जो भी ऊपर के अधिकारी हैं हमको चक्रव्यूह में भेज रहे हैं, मुझे पता है एक बार ये सेवा करने के लिए प्रवेश करूंगा तो कुछ ट्रॉफी लेकर नहीं निकलने वाला हूं, जगत को या भक्तों के समाज में दिखाने लायक कुछ नहीं रहेगा इसमें, तो मैं ये सेवा क्यों करूं, तो मन में उत्साह नहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को प्रचार के लिए बंगाल भेजा और रूप सनातन को वृंदावन भेजा कि जाओ वहां के जो स्थान है तीर्थ स्थल उनको खोजो। महाप्रभु ने जिनको जो सेवा दी वो वहां गए। रूप सनातन ये नहीं सोचा रहे नित्यानंद प्रभु को अच्छी सेवा मिल गई प्रचार की, वहां पे घूम रहे बढ़िया बंगाल में, और हमको कहां जंगल में मंगल करने भेज दिया है। और वृंदावन उस समय तो जंगल ही था, अरे वृंदावन में जाऊंगा जंगल में घूमता रहूंगा लेक्चर का चांस नहीं मिलेगा, कोई सुनेगा नहीं, अरे रूपा जाके कुछ बताओ यार। चैतन्य महाप्रभु को, नहीं नहीं सनातन तुम जाओ, तुम्हारी बात मानेंगे। यहां क्यों भेज दिया, मुसलमान की सेवा की इसलिए भेज दिया लगता है, ऐसा क्यों किया हमारे साथ? नित्यानंद प्रभु को बढ़िया सेवा मिल गई और हमको भेज दिया यहां पर, जहां पर दूर दूर तक है ही नहीं, केवल जंगल ही जंगल है। लेकिन वो आए और उनके मन में कोई विकार नहीं था, तन मन धन के साथ उन्होंने अपना समय बिताया और ये पूरा जंगली इलाका था, इस जंगली इलाके को काट काट कर उन्होंने मंदिर स्थापित किए, निर्माण किए, जिसका ऐश्वर्य इतना हो गया कि औरंगजेब जैसा व्यक्ति भी उसके प्रति आकर्षित हुआ दूसरी ढंग से। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने जो नाना प्रकार के ग्रंथ लिखे वो आज तक मानव समाज उसको पढ़ रहा है। तो इसलिए कई बार ऐसी सेवा मिलती है जब लगता है कि दूर दूर तक आशा की किरण नहीं दिखती कि इससे कुछ प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी लगे रहना चाहिए, क्योंकि हम अपनी सीमित बुद्धि और दृष्टि से समझ नहीं सकते। और फिर पांचवी बात है कि अंत में उन्होंने भी कूटनीति का अपनाया और प्रसन्न वदनाम भोजम, उनके मुख पर मुस्कान थी और वो मुस्कुराने लगे, भले मन में उनकी बात दूसरी थी। तो इस तरह से कई बार हमारी सेवा में इन सभी भावों को हमें अपनाना पड़ता है, तब जाकर हृदय में जो देवकी है कृष्ण भक्ति है उनको हम बचा सकते हैं। तो अंत में हम देखते हैं कि फिर इन सभी चुनौतियों को झेलने के बाद कृष्ण वसुदेव के, कंस तो उनको छोड़ दिए उस समय और मान गए, और कृष्ण वसुदेव के मन से देवकी के मन में प्रवेश किए, और ये मैं चौथा पॉइंट वर्णन करने जा रहा था। और इस बात को श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, तत्तो जगत मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूर सुतेन देवी दधार सर्वात्मकम आत्मभूत काष्ठा यथा। अर्थात जिस तरह एक तरफ सूर्य अस्त होता है दूसरी तरफ चंद्र का उदय होता है, उस तरह कृष्ण वसुदेव के मन से देवकी के मन में प्रवेश हुए। तो इसको कहते हैं दीक्षा। दीक्षा अर्थात जब कोई महान भक्त जिसके मन में, जिसके दिल में, जिसके हृदय में कृष्ण हो, वो किसी साधक के हृदय में कृष्ण का संचार करता है। तो जब गुरु के मन से शिष्य के मन में कृष्ण भावना की एक लहर दौड़ती है, तब कृष्ण भक्ति का उद्गम या उदय ऐसे शिष्य के हृदय में होता है। तो इस तरह कृष्ण का ट्रांसफर वसुदेव के मन से देवकी के मन में दीक्षा के माध्यम से हुआ और कोई सामान्य माध्यम से नहीं हुआ। इसलिए कृष्ण भक्ति के इन सभी बाधाओं को लांग कर आगे बढ़ने के लिए गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है, महान भक्तों की कृपा बहुत आवश्यक है। और जब उनकी कृपा लेकर हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हर प्रकार की चुनौतियों को हम जीत सकते हैं, लांग सकते हैं। तो इस तरह हम यहां इस श्रीमद् भागवत के इस सुंदर प्रसंग के माध्यम से ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने भक्ति के जीवन में बहुत सारी प्रेरणादायक बातें सीख सकते हैं। और यहां मथुरा के इस सुंदर कृष्ण जन्म स्थान के निकट इस स्थल पर बैठकर हम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, और कुछ ही क्षणों में हम अभी कृष्ण जन्म स्थान पर जाएंगे। और कृष्ण जन्म स्थान पर हम देखते हैं कि कैसे कृष्ण का जन्म या प्राकट्य स्थली, जहां पर जो भी हम प्रार्थना करें वो भी कार्तिक के मास में उसी स्थल पर कोटि कोटि बार अधिक उसका फल प्रदान होता है। तो इसलिए मैं सभी भक्तों के संग में यही प्रार्थना करूंगा श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में कि जो भी हमारे भक्ति में बाधाएं हों, उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको शक्ति प्रदान करें, जैसे हाल ही में प्रेरणा के एक लेक्चर में महाराज बता रहे थे, हमको प्रेम भिखारी बनना है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हमको भिखारी बनने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता। हमको यही दिखाया जाता है कि कैसे तुम लोग सीख जाओ और अपना काम स्वयं करो, हम तुमको टेक्निक देंगे, टेक्निक सीख गए खुद कर लो। तो ये हमारे दिमाग में फिट है, तो हमको लगता है भक्ति भी एक टेक्निक है, थोड़ा दो चार टेक्निक सीख लिया भक्ति का तो मैं स्वयं भगवत धाम में घुस जाऊंगा। लेकिन ये भिखारी होने का जो कॉन्सेप्ट है, ये अर्वाचीन मानव समाज के लिए बहुत ही दुविधाजनक है। इसलिए भिखारी बनना बहुत कठिन है और पूरे जीवन भर का अभ्यास लगता है, तब जाकर धीरे धीरे मन में भावना आती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण से भिक्षा मांगू। अर्थात मेरे अनर्थ है, मेरे काम क्रोध लोभ है, अपने प्रयास से जाएंगे नहीं, बड़े शक्तिशाली वैरी और शत्रु हैं। इसलिए जब तक निस्साय भाव से मैं कृष्ण से प्रार्थना नहीं करूंगा, तब तक इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो हे राधा रानी, हे कृष्ण, आपके ही इस परम पुण्य पवित्रीकृत जन्मभूमि पर हम लोग यहां एकत्र हुए हैं, आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके हमारे हृदय में कितने ही अनर्थ क्यों न हो और भले ही हृदय में मिथ्या अहंकार का प्रादुर्भाव हो और हो सके हमारी महत्वाकांक्षाएं भी गगन चुंबी हो और शुद्ध होने की रंचमात्र इच्छा भी न हो, लेकिन आपकी कृपा हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। इसलिए इस भाव के साथ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भक्ति में, भक्तों के संग में हमारी प्रीति बनी रहे, भक्तों के प्रति अपराध न हो और जो भी हमने अपराध किए हो या हमने जो भी कुछ गलत काम किया हो अपने जीवन में, भगवान उसको क्षमा कर दें और एक नवीन उत्साह का संचार करें हमारे जीवन में, जिससे कि हम भक्ति में और आगे बढ़ सकें। मथुरापुरी नाम कृष्णानंद प्रभु बता रहे थे, इस जगह का नाम मधुपुरी था, अर्थात मथुरा की स्थापना एक राक्षस असुर ने की एक दृष्टि से देखा जाए तो, फिर भी भगवान वहां प्रकट हुए और अपने लीलाओं को रचाए। तो अपना हृदय भी अभी आसुरिक है, लेकिन यदि हम कृष्ण भक्ति का ठीक प्रकार से पालन करेंगे तो भगवान ये देखते नहीं कि असुर हो या क्या हो, भगवान इच्छा करें तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और किसी भी हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रार्थना के साथ कि भगवान अपनी विशेष और असीमित अनुकंपा हम पर बनाए रखें, जिससे कि हम हरि नाम, हरि कीर्तन, भागवत श्रवण और वैष्णव सेवा में विशेष रुचि लेते रहें, भक्तों के संग को महत्व दें, भक्तों को सामान्य न माने, प्रत्येक भक्त के प्रति हमारी प्रीति जागृत हो, दिवस प्रतिदिवस, वर्ष प्रतिवर्ष भक्ति में हमारा उत्साह बना रहे। भक्ति प्रेरणा के आधार पर चलता है, निजी प्रयास के आधार पर नहीं। पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार पर हम ये भक्ति का एयरप्लेन नहीं चला सकते। भक्ति का एयरप्लेन चलता है तो केवल कृपा के फ्यूल से, तो जब वैष्णव की कृपा से फ्यूल भरते हैं तब ये उड़ान चलती है, और ये उड़ान जो चलती है इसमें कोई लैंडिंग नहीं होता, लैंडिंग सीधा भगवत धाम में होता है। भगवत धाम जाने से पहले लैंडिंग को फॉल डाउन कहते हैं। इसलिए एक बार हमने भक्तों की कृपा का जो फ्यूल भर दिया है, बस वो सप्लाई बना रहे और हम उसमें आगे चलते रहें, और जब भक्तों के प्रति अपराध करेंगे तो फ्यूल टैंक में छेद कर रहे हैं, और जो भक्तों की कृपा है धीरे धीरे वो सब निकलती चली जाती है और लगता है कि क्या बात है, फ्लाइट नीचे जा रहा है, लगता है लैंड होने का समय आ गया। लैंड नहीं, उसको फॉल कहते हैं, क्रैश कहते हैं। इसलिए भगवान भक्तों के प्रति इस तरह के अपराधों से हमें बचाएं, और इस तरह प्रतिक्षण हम कृष्ण पर ही एक अबोध बालक की तरह और एक भिक्षुक की तरह आश्रित रहें। इस प्रार्थना के साथ मैं अभी की कथा को विराम देता हूं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, कृष्ण जन्मस्थान की, निताय गौर प्रेमानंदे।